लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि भारी संख्या में विस्थापितों और शरणार्थियों को पनाह देने वाले राष्ट्रों को उनके प्रयासों में समर्थन मिले। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। ईश्वर ने मिस्र देश तानीस के मैदान में उनके पूर्वजों को चमत्कार दिखाया था। उसने समुद्र विभाजित कर उन्हें पार कराया। उसने जल को बांध की तरह खड़ा कर दिया। वह उन्हें दिन में बादल द्वारा और हर रात को अग्नि के प्रकाश द्वारा ले चलता था। उसने मरुभूमि में चट्टाने फोड़कर मानो अगाध गर्त में से उन्हें जल पिलाया। उसने चट्टान में से जल धाराएं निकाली और पानी को नदियों की तरह बहा दिया। फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते रहे और मरुभूमि में सर्वोच्च ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 78वें भजन के 11 से लेकर 17 तक के पद, जिनकी व्याख्या हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत की थी। 78वें भजन के प्रथम पदों के समान ही इन पदों में भी उपदेशक ईश्वर के कार्यों का बखान करना जारी रखता है। वह इसराइली लोगों के इतिहास के पन्नों को उलटते हुए उन्हें स्मरण दिलाता है कि जब वे मिस्र से प्रतिज्ञात देश की ओर निकले थे, तब यदि ईश्वर अपने चमत्कार नहीं दिखाते तो इसराइली जाति प्रतिज्ञात देश तक कभी भी पहुँच नहीं पाती। वस्तुतः उक्त पदों में प्राचीन व्यवस्थान के निर्गमन ग्रंथ की कहानी निहित है, जिसमें मिस्र से पार गमन की जटिल यात्रा और संकटों को पार करने में ईश्वर से मिली मदद का विवरण मिलता है। श्रोताओं, ईश्वर ने इजरायली जाति की हर प्रकार से रक्षा की थी, किंतु रास्ते में इजरायली लोगों का विश्वास डगमगा गया था। मार्ग में पड़ने वाली कठिनाइयों को देखकर उन्होंने ईश्वर को कोसा और उन पर भरोसा रखने के बजाय काम वासना में लग गए। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। 78वें भजन का उपदेशक मिस्र से शुरू हुई इजरायली जाति की जटिल यात्रा के दौरान हुई घटनाओं द्वारा हमें स्मरण दिलाता है कि हालांकि ईश प्रजा कहलाने वाले लोगों ने ईश्वर पर भरोसा नहीं रखा, उनके नियमों को तोड़ा, किंतु इसके बावजूद प्रभु ने उनकी रक्षा की। उन्होंने मरुभूमि की चट्टाने फोड़कर उन्हें जल पिलाया और उनका मार्गदर्शन किया। उसी प्रकार आज भी वे हमारी रक्षा को तैयार हैं, भले ही हम उन्हें भूल जाएं, ईश्वर हमें कभी नहीं भुलाते। आज भी वे हमें संकटों के सागर से बचाते हैं। जरूरत है तो केवल उन पर भरोसा रखने की, उनके नियमों के अनुकूल जीवन यापन करने की और आपत्ति के क्षण उन्हें पुकारने की।
आपत्काल पड़े तब सुन ले विनती नाथ तुम्हारी, आपत्काल पड़े तब सुन ले विनती नाथ तुम्हारी।
आगे 78वें भजन के 18वें, 19वें और 20वें पदों में भजनकार दर्शाता है कि ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने के बावजूद लोग उन पर भरोसा नहीं रख पाए। इन पदों में वह बताता है कि वे प्रभु के चमत्कारों को देख लेने के बाद भी उन पर विश्वास करने में असफल रहे। ये पद इस प्रकार हैं। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार प्रभु की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए यह कहा, क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? उसने तो चट्टान पर प्रहार किया और उसमें से जल की नदियां फूट निकली, किंतु क्या वह अपनी प्रजा के लिए रोटी और मांस का प्रबंध भी कर सकता है? श्रोताओ, इन शब्दों में लोगों की कृतज्ञता व्यक्त हुई है। प्रभु के महान कार्यों के लिए उनके प्रति धन्यवाद देने के बजाय वे उन्हें केवल कोसते ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का भी दुस्साहस किया। भजनकार ने हमारे समक्ष इन पदों को रखकर यह दर्शाना चाहा है कि उस युग के लोग अपने जीवन में संपादित घटनाओं में ईश्वर के चमत्कारों को देख नहीं पाए थे। एक प्रकार से इन महान कार्यों के प्रति उनकी आंखें अंधी हो गई थी। जिन घटनाओं से वे गुजर रहे थे उनमें अर्थ नहीं ढूंढ पाए थे। उन्होंने ईश्वर द्वारा प्रदत्त संविदा के नियमों को तोड़ा और उनके कार्यों पर प्रश्न उठाए कि कैसे ईश्वर चट्टान से पानी निकाल सकते हैं, कैसे वे सागर से रास्ता निकालकर उन्हें पार जाने दे सकते हैं। यह सब कैसे हुआ, उनकी समझ से बाहर था, उनकी बुद्धि के परे था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उनमें विश्वास की कमी थी और विश्वास की कमी ही लोगों में शंकाओं को उत्पन्न करती है। हम प्रभु के हर कार्य पर प्रश्न नहीं उठा सकते, उन पर अटकलें नहीं लगा सकते। उन्हें हम केवल विश्वास की आंखों से परख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के रहस्य को समझना मानव बुद्धि के परे है। उनकी लीला अपरंपार है। इस स्थल पर श्रोताओं को स्मरण दिला दें कि स्तोत्र ग्रंथ के 78वें भजन का रचयिता दृष्टांतों में बात कर रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर के महान कार्यों को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी दृष्टांतों में शिक्षा प्रदान की थी। इन दृष्टांतों के पीछे छिपी शिक्षा को ग्रहण कर ही मनुष्य ईश्वर के महान कार्यों और चमत्कारों की थाह तक पहुंच सकता है। 78वें भजन के दूसरे पद में भजनकार स्वयं कहता है, मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। जब हम इन शब्दों का मर्म समझ पाएंगे तभी हम ईश्वर के कार्यों को पहचान पाएंगे, अन्यथा ईश्वर विषयक बातें हमें मन गढ़ंत कहानी प्रतीत होंगी। उदाहरण के लिए बता दें कि इस भजन के 13वें पद में हम सागर विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। उसने समुद्र विभाजित कर उन्हें पार कराया, उसने जल को बांध की तरह खड़ा कर दिया। श्रोताओ, आम इंसान के लिए इस बात पर विश्वास करना असंभव है, भला समुद्र को कैसे विभाजित किया जा सकता था। किंतु यदि हम निर्गमन ग्रंथ के 14वें अध्याय के 21वें पद पर गौर करें तो इसमें लिखा है, तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। तो यह एक प्राकृतिक घटना थी। इस प्रकार श्रोताओं, हम देखते हैं कि 78वें भजन के उसने जल को बांध की तरह खड़ा कर दिया शब्द भजनकार की रचना का परिणाम थे और जो कुछ मिस्र से प्रतिज्ञात देश में जाने वालों के साथ हुआ वह ईश्वर के चमत्कारों का परिणाम था।
तू यहाँ भी, तू वहाँ भी। रचनाए तेरी तुझको बखाने। कल कल करती तोरी नदियाँ यूं कहती,